ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं विधानी कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते। अतद वीर्य विदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मितः। एवं विधानी, इस प्रकार के अन्य भी बहुत से कर्म, गोवर्धन धारण जैसे और आश्चर्यमय कर्म, कर्माणि लीलाओं को, गोपाः गोप कृष्णस्य कृष्ण के, ते वे गोप जो कृष्ण के प्रति स्नेह से भरे रहते हैं। अतद वीर्य विदः, श्री कृष्ण के प्रभाव को या उनकी भगवत्ता को वे नहीं जानते हैं, तो वे सब अतिशय विस्मित होकर के नंद बाबा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। कल कथा हुई थी कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया और उसके बाद सभी गोप गोपी ब्रज में चले आए, गांव में बहुत मंगल छा गया, स्वर्ग में भी और इस पृथ्वी पर भी सब जगह उत्सव हो रहा था और गोप जो ग्वाल बाल थे वे बारंबार अनेक कृष्ण के कर्मों को देखे थे। वीक्ष्य, वी का अर्थ विशेषण, इच्छा, देखकर विशेष रूप से देखते थे कई ऐसी लीलाएं, तो उनको बड़ा विस्मय हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। ये छोटा सा बच्चा और ये ऐसे अद्भुत कर्म कैसे कर रहा है। तो वे सब नंद बाबा के पास पहुंचे उनसे पूछने के लिए कि ये बालक का कुंडली बनवाए हैं ऋषि ब्राह्मण द्वारा, ये पहले क्या था, इस समय क्या है, इसका भविष्य क्या होगा। तो ये अब पिता से ही पूछा जाएगा ना, कृष्ण के बारे में तो कोई ज्ञान है नहीं। अतद वीर्य विदः, कृष्ण के वीर्य को, ऐश्वर्य को भी जानते नहीं थे। अतः नंद बाबा के पास पहुंचे, सबने कहा कि नंद महाराज से ही पूछना चाहिए, इस प्रकार का एक कर्म कर रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि यह साक्षात भगवान विष्णु है, नारायण है, और हम लोग बड़ा अपराध कर रहे हैं, इससे गाय चरवा रहे हैं और चोरी करने पर इसे चोर चोर कहते हैं। परंतु यह भी आश्चर्य होता था कि जब भगवान है, हो सकता है, तो फिर चोरी क्यों कर रहा है। इस तरह वे बड़े चकित होते हो गए थे। कई लीलाओं में वे ऐसा सोचते थे कि ऐसा हो गया भगवान की कृपा से, लेकिन जब श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया 7 दिन 7 रात तक, तो इस लीला को देखने के बाद वे और अधिक विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार से पर्वत को कोई मनुष्य नहीं उठा सकता। देखे थे अभी अभी इस लीला को, तो वह मन पर छाया हुआ है। अतः अब ये लोग निश्चित इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये या तो भगवान शंकर है या भगवान नारायण। ऐसा अद्भुत कर्म कर रहा है। नंद बाबा के पास पहुंच करके वे कहते हैं, आपस में यही सोच रहे थे, गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला को बार बार याद कर रहे हैं। वे देखे थे, हम लोगों जैसे सुने नहीं, देखे थे साक्षात। तो वे कहते हैं, यह सप्त हाय नौ बाल करेण ऐकेन लीलया कथम विभ्रत गिरिवरम पुष्करम गजराड्य। अरे देखो कितना आश्चर्य है, जैसे गजराट गजेंद्र पुष्कर को धारण करे, कमल को उखाड़ करके धारण करे, इस प्रकार से इस महान पर्वत को इस 7 वर्ष का बच्चा एकेन करेण एक हाथ से उठा लिया और बिभ्रत, तो यह कथम, ये कैसे हुआ, ये कोई आदमी कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकता है। देवताओं में सबसे हेड भगवान शिव या भगवान विष्णु कर सकते हैं। यह वही होगा, लेकिन इसकी अन्य भी कर्म हैं इसके, जैसे कभी कभी घर से बाहर निकलना चाहता है तो चौकट भी नहीं लांघ पाता है और चिल्लाने लगता, रोने लगता है, और कोई आता है तब उठा करके पार करता है। तो ये सब आश्चर्य में डालने वाली लीलाएं हैं, कर्म हैं। इतना कमजोर बच्चा देखो, 7 वर्ष का सप्त हाय न, हायन का अर्थ है वर्ष और सप्त का अर्थ 7 वर्ष का बच्चा और 7 कोस ऊंचा पर्वत धारण कर रहे। गिरिराज पहले बहुत ऊंचा थे, बहुत ऊंचा, ऐसा वर्णन आता है कि गोवर्धन की ऊंचाई सत्य लोक को छूती थी, ब्रह्मा जी के लोक को, इतना बड़ा पर्वत था। लेकिन यह घट रहा है, तो बहुत बड़ा पर्वत था जो भगवान ने धारण किया। तो इतने बड़े पहाड़ को, पर्वत को 7 वर्ष का नन्हा सा बच्चा धारण किया। तो आपस में लोग कह रहे थे, कथम, ये कैसे हुआ, कोई पहलवान बड़ा शरीर वाला भी उठा नहीं सकता है, और वो भी उठाया तो एकेना करेड़ा एक हाथ से, दोनों हाथ लगा करके कोई नहीं उठा सकता है, दोनों हाथ लगा करके कोई पहाड़ कैसे उठाएगा। लेकिन इतने बड़े पहाड़ को इस बच्चे ने एक हाथ से उठाया, और केवल उठा ही नहीं लिया, बिभ्रत धारण किए रहा 7 दिन 7 रात। ये कथ हमें कैसे हुआ, यही आश्चर्य हो रहा था। और एवं विधानी सुखदेव गोस्वामी कह रहे, इसी प्रकार की अन्य लीलाएं भी, एवं विधानी मतलब गोवर्धन धारण जैसा अन्य कर्म एवं विधानी, एवं मैंने ऐसा इसी प्रकार के अन्य भी, तो वे आपस में गिना रहे हैं। और गोप कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं कि सब लोग सुन रहे हैं, वो हाँ 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 सब बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में। अरे इतना आश्चर्य, कैसे पर्वत उठाया, एक हाथ से उठाया। तो कोई कहते हैं तो के न अमिलिता क्षण पुतनाया महौजस पीतहस्तन सह प्राणय काले नैव वयस्तन। देखो कितना आश्चर्य था, अभी यह बिल्कुल बच्चा था, अभी 7 दिन का भी नहीं था, 6 दिन का था। तो पूतना राक्षसी आई थी ब्रज में, और पूतना बहुत बलवान थी, बहुत बड़ा शरीर उसका, लेकिन ऐसी राक्षसी को इस बच्चे ने मार दिया, उसके स्तनों को पिया, और स्तन पीने के साथ साथ उसके प्राण को भी पी गया, वो छटपटा करके मर गई। सब जगह कथम लगा हुआ है, और शुरू में लगा दिया है कथम, ये कैसे मार दिया, छोटा सा बच्चा जो अभी आंख मुश्किल से खोल रहा था। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो आंखें बंद रहते हैं, तो यह आंख अभी अभी खोला था। और मेरी ताक्षण बिल्कुल बच्चा था, उस समय पूतना का प्राण पी गया, तो उस समय आश्चर्य नहीं हुआ गोपों को। जब गोपियों ने पूतना की बात कहा तो गोपों को इतना आश्चर्य नहीं हुआ, पर आज उसी लीला का स्मरण करके आश्चर्य हो रहा है। गोवर्धन धारण के बाद अन्य लीलाओं का स्मरण होने लगा, ये पूतना को कैसे मार दिया, निश्चित यही मारा था। उस समय तो लोग समझे कि भगवान की कृपा से वो बेहोश होकर के गिर गई या मर गई, लेकिन आज कह रहे हैं कि यही मारा था। यही कुछ करे तो स्तन पिया था, हाँ स्तन पीता स्तन सह प्राणी, वो स्तन तो पिया था लेकिन प्राणों को भी पी गया पुतना का प्राण पी गया। उस राक्षसी का स्तन पीने का केवल नाटक भगवान कर रहे थे, पिए नहीं थे। राक्षसी का दूध कैसे पिएंगे, पर यह भी बात है कि वो गोपी बन करके, गोपी ड्रेस पहन करके आई थी, ऐसा भ्रम हो सब लोगों को कि यह ब्रज की ही कोई गोपी है। वो तो कंस के असेंबली का सदस्य थी, वो आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन गोपी बनकर आई थी, और यशोदा जैसा बनकर आई थी। तो भगवान ने उसका डार्क साइड नहीं देखा, केवल इतना ही विचार किया कि यह बेचारी हमको दूध पिलाना चाहती है, भले दूध में विष मिला हुआ था, उसको भगवान ने नहीं देखा, हमको कुछ दे रही है, हमको दूध पिलाने आई है, यही उन्होंने देखा, तो वे पीने लगे। रोष के साथ, एक भक्त कभी कहते हैं रोष का अर्थ होता है भगवान शंकर, तो कृष्ण पी रहे थे, वे पुतना के स्तनों को पी रहे थे, और जो उसमें जहर लगा था उसको भगवान शिव पी रहे थे, क्योंकि विष पीने का उनका प्रैक्टिस है, तो इसीलिए वे भगवान के निमंत्रण के अनुसार विष पी लिए और भगवान दूध पी लिए। पर जो कुछ भी हो, गोप कह रहे हैं यही पिया था, यही मारा था पुतना को। पुतना जब मर गई थी, उसके देह पर श्री कृष्ण लेटे थे, उसमें बैठ नहीं सकते थे, छोटे बच्चे थे, बच्चे शुरू शुरू में बैठना भी नहीं जानते हैं, तो श्री कृष्ण लेटे हुए थे उसके शरीर पर और हाथ से थपथपा रहे थे देह को उसके। और सुखदेव जी कहता है कि जब भगवान ने पी लिया उसका दूध, मर गई, और उसके बाद गोप लोग नंद बाबा के साथ जो गए थे वो मथुरा, वे लौटे, तो सभी गोप मिल करके पुतना के देह को जलाने के लिए विचार करने लगे, कैसे जलाया जाएगा, राक्षसी है, राक्षसी को जला देना चाहिए मरने के बाद, या किसी सांप को मर जाए तो उसे जला देना ठीक होता है, नहीं तो फिर जी सकता है, फिर विष संचार कर सकता है। तो वे लोग देखे बहुत बड़ा शरीर है, उसने अपना शरीर प्रकट किया था, इतने बड़े शरीर को कैसे जलाया जाएगा। तो वे लोग हजारों कुल्हाड़ी लेकर के काट काट करके उसके देह को छोटा छोटा किए, छोटा छोटा करके और बड़े बड़े बांस से उसको फेंक फेंक करके अलग अलग करके जलाए, छू नहीं रहे थे देह को, देह को लकड़ी से लाठी से हटा रहे थे अलग 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 टुकड़े को, और साधारण काष्ठ पर उसको जलाए। लेकिन जब पुतना को जलाए तो उसके देह से जो धुआं निकला वो अतिशय सुगंधित धुआं था, चीता का धुआं नहीं था, बहुत सुगंध उस धुएं से निकल रही थी। तो नंद बाबा मथुरा से आ रहे थे गोपों के साथ, तो चकित हो गए कि ये धुआं कहां से उठ रहा है, लगता है कि बलि महाराज सुतल लोक में यज्ञ किए हैं, वहीं से धुआं निकल रहा है, या स्वर्ग में देवता लोग किए होंगे यज्ञ, वहां से धुआं आ रहा है, क्योंकि यज्ञ का धुआं था, बहुत सुगंधित धुआं, या गूगल का धुआं या चंदन का धुआं ऐसा लग रहा था। वास्तव में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चूंकि भगवान उसका स्तन पिए थे, इस कारण से वो देह दिव्य हो गया था और उससे दिव्य सुगंध निकल रही थी, उस धुएं से, देह से कितनी सुगंध निकलेगी, जब धुआं में इतनी सुगंध है तो देह में भी होगी बहुत। तो पुतना के देह से उत्पन्न धूम में वह सुगंध थी। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण से संपर्क करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वही देह जिससे जलाने पर दुर्गंध निकलती है, वही कृष्ण के संपर्क से वो देह सुगंधित हो गया, जो मांस खाने वाला देह था। पुतना मांस खाती थी, खून पीती थी, लेकिन फिर भी उसका देह सुगंधित हो गया। तो ये गोप लोग आज कह रहे हैं कि पूतना को शिशु कृष्ण ही मारा था। इस गोवर्धन धारण की लीला से हम समझ रहे हैं। और उसके बाद एक और कर्म किया कृष्ण, हिन्वतोधा शयानस्य मासस्य चरणाउदक। अभी यह महीने भर का था, वर्ष का नहीं, तीन महीने का था। और यह शकट के नीचे सुलाया गया था। एक दिन जब कृष्ण तीन महीने के थे तो उस समय वे करवट बदले। बच्चे प्रायः उतान सोते रहते हैं, लेकिन कृष्ण तीन महीने के जब हुए तो अपने आप करवट बदले। तो मां जसोदा को इससे बहुत प्रसन्नता हुई कि बच्चे का शरीर ठीक है, कोई पोलियो सुलियो नहीं है देह में, ये अपने आप करवट बदल रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उस अवसर पर मां जसोदा ने एक फेस्टिवल किया, ब्रज की स्त्रियों को खिलाना पिलाना, गान बजाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। इसके लिए वो रोहिणी को आज्ञा दे करके किचन में गई थी देखने प्रसाद कैसे कैसे बन रहा है। बहुत गान हो रहा था, गोप लोग गा रहे थे, स्त्रियां गा रही थी, ब्रज की गोपियां जो कृष्ण को अपना बच्चा मानती हैं, वे सब आई थी। जसोदा की सहेलियां गीत गा रही थी और भोजन बन रहा था, बहुत विस्तार से पकवान बन रहे थे और घर में इतनी भीड़ थी कि कृष्ण के लिए कहीं जगह नहीं थी। सब लोग भरे थे, ब्राह्मण उधर स्वस्ति वाचन कर रहे थे और स्त्रियां सब जगह थीं, गोप लोग थे, इसलिए कहीं जगह नहीं मिली। तो मां जसोदा ने उस बच्चे को घर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे, शकट के नीचे छोटा पलंग लगा करके और सुला दिया और कुछ बच्चों को कह दिया इसको देखते रहना, कोई बिल्ली सिल्ली नहीं आवे, कोई कुत्ता न चाटे, ये कहा या मक्खियां इस पर न बैठे। तो बच्चे तो बहुत प्रेमी थे, कृष्ण का आकर्षण था, वे उसको देख रहे थे। तब तक अकस्मात गाड़ी के उलटने का शब्द हुआ, बच्चे देखे थे, कृष्ण को नीचे सुलाया गया था, सब लोग खा रहे थे और भगवान बिना आहार के अब रोने लगे। और श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सब खा रहे थे तो भगवान क्यों नहीं रोए, सब खा रहे थे और ये बिना खाए हैं, अभी मां ने दूध नहीं पिलाया था तो सुला दिया। तो सोए थे और बच्चे जब रोते हैं तो पैर को उछालते हैं, तो रोने लगे, पैर उछाल रहे थे, पैर को उछालते उछालते थोड़ा टच हो गया टो से, छकड़ा तो ऊपर चला गया और उल्टा होकर के गिर पड़ा, कृष्ण के देह पर नहीं, किसी बच्चे पर नहीं, बहुत जोर की आवाज हुई। उस झकड़े पर बहुत घी लगा हुआ था, दही लगा हुआ था, गोरस, गाय का रस, और सब बिखर गया, गिर गया, सब बर्तन फूट गए। एक भक्त कहते हैं कि भगवान ने क्यों उलट दिया, तो भगवान विचार किए कि मैं सबसे बड़ा रस हूं, रसो वैसा, तो ये हमारे ऊपर एक कौन रस आ गया, इसको उलटना चाहिए। इसी से भगवान सारे रस को, गोरस को नीचे कर दिए। ये उत्प्रेक्षा है भक्तों की। तो बहुत जोर की आवाज हुई, धड़धड़ चढ़चढ़ आवाज हुई, बर्तन फूटने का, गाड़ी टूटने का। ये बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं मान लीजिए पार्किंग में ट्रक खड़ा किए हैं और ट्रक अपने आप उलट जाए, कितना आश्चर्य होगा। सब लोग भोजन छोड़ करके, गान बजान छोड़ करके वहां आए, माँ यशोदा भी आई, देखने लगे क्या हो गया क्या हो गया। तो बच्चों ने कहा, जो कृष्ण को देख रहे थे, उन बच्चों ने कहा कि इस यही रो रहा था और रोते रोते पैर उछाला और इसी से गिर पड़ा। तो वो लोग कहे, गोप लोग कहे, चुप, इस छोटे बच्चे के पलटने से गाड़ी पलट गई। तो कुछ लोग कहे, ये तो बच्चे हैं ही, लेकिन जो लोग इनसे पूछ रहे हैं वो इनसे भी ज्यादा बच्चे। अब सुनो क्या उत्तर है, इसने पलटा है। कोई नहीं माना कि कृष्ण शकट को पलट दिए, पर आज कह रहे हैं कि यही पलटा था वो शकट। हिन्व तोधा सयान से मास से चरण उदक, ये सोया था शकट के नीचे और रो रहा था। 3 महीने का था, चरण उदक, चरणों को ऊपर उठा करके रो रहा था, और इसी ने शकट को पलट दिया था। तो उस दिन नहीं माने, 7 बरस के बाद अब रियलाइजेशन हुआ कि यही उलटा था। इस प्रकार गोप लोग तो भगवान की परम मधुरमय लीलाओं के रस में निमग्न रहते थे, लेकिन आज हक्का बक्का हो गए हैं कि इसने गिरिराज को उठा लिया। तो नंद बाबा से पूछेंगे तो नंद बाबा तो क्या कहेंगे, वो तो और माधुर्य में डूबे रहते हैं, और लीलाओं के बारे में कह रहे हैं। एक हायन आसीन ह्रिय माण विहाय सा, ये जब 1 वर्ष का था, 1 हायन, उस समय की बात है, जब यह 1 वर्ष का था, उस समय बैठना सीख गया था, चलना नहीं सीखा था। बैठा था और बहुत जोर की आंधी आई, साइक्लोन आया और इसको उड़ा करके ले गया। बहुत जोर की आंधी आई और उसी बवंडर में ये ह्रिय मारा, हर लिया गया, विहाय सा आकाश मार्ग में चला गया। दैतेन यस्तेना वर्तम, दैत्य था एक राक्षस, हर करके ले गया आकाश में, पर आकाश में ही यह छोटा बच्चा उसका कंठ पकड़ लिया, अहन कंठ ग्रहातुरम, और कंठ पकड़ने से वो आतुर हो गया राक्षस, आह याह करता हुआ चिल्लाता हुआ गिरा। जो उस समय भी गोपों ने कहा था कि ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राक्षस मर गया, लेकिन आज कह रहे हैं कि यही गला दबा करके मार दिया था, अहन कंठ ग्रहातुर यही मारा, कंठ पकड़ लिया और राक्षस छटपटाने लगा और एक पत्थर पर गिर गया। तृणावर्त नाम था उसका, जो तृणावर्त को इसी ने मारा था, जो पुतना को इसी ने मारा था, शकटासुर को मारा था और तृणावर्त को मारा था। तृणावर्त बहुत भारी बवंडर के रूप में आया था और राक्षस, तो श्री कृष्ण मां जसोदा की गोद में थे, वे अकस्मात बहुत भारी लगने लगे, बहुत भारी। अब कृष्ण के वजन को ले सकना, कृष्ण को ढोना माता के लिए संभव नहीं था। बड़े आश्चर्य में पड़ी, इतना भारी क्यों हो गया, शरीर में कौन रोग बढ़ गया, क्या हो गया। वो भगवान का स्मरण करने लगी और कृष्ण को गोद से उतार दी, भार सहा नहीं जा रहा था, तो घर का काम भी करना था, कृष्ण को गोद से उतार करके पलंग पर रख दी और घर के काम धंधे में लग गई करने में। और कृष्ण तो उस तृणावर्त के बवंडर में, बवंडर के रूप में आया था, उसमें वे उड़ना चाहते थे, आकाश में जाना चाहते थे, इसीलिए भारी लगने लगे। या अभ्यास कर रहे हैं कि मैं इतना भारी बन जाऊंगा कि वो हमको उड़ा कर ले नहीं जाएगा। जो मां जसोदा ने रख दिया और देखने लगी बड़े चकित होकर के, इसका वजन एकाएक क्यों बढ़ गया। पहले तो मैं परम आनंद से अपनी गोद में लेकर इसको घूमती थी और आज क्या हो गया, इतना भारी हो गया। तो रख दी तो बहुत जोर की ध्वनि हुई, बहुत बड़ा तूफान आया और चक्रवात, घूमता हुआ पवन, बवंडर समझते हैं ना, जो घूमता हुआ वायु आता है आवर्त में, तीर्ण को उड़ा करके ले जाता है, खरपात या कागज वगैरह सबको उड़ा कर ले जाता। तो वही बवंडर आया, इतनी धूल उड़ी कि सभी ब्रजवासियों की आंखें अंधी हो गईं, वो देख नहीं सकते थे, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, इतने जोर की आवाज हो रही थी बवंडर में आवाज। मां जसोदा रखी थी कृष्ण को, तो वो भी फिर देखने लगी कि हमारा बच्चा कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसे आंख में धूल भर गई थी, अंदाज से ऐसे देख रही थी पलंग खाटी खाट को, कृष्ण कहाँ है, लेकिन कृष्ण का पता नहीं था। वो तो उड़ा करके ले गया था तृणावर्त, वो लगी रोने बड़े जोर से माता जसोदा, लेकिन उसका रोना कोई सुन नहीं रहा था, सबके कान में साइक्लोन की आवाज भर गई थी। मां जसोदा रो रही थी, बच्चा का पता नहीं है, आंधी में सयाने लोग भी स्वस्थ नहीं रह सकते थे, वो तो बच्चा है, तो तृणावर्त उड़ा करके ले गया बवंडर के रूप में, कुछ दूर आकाश में चले गए भगवान। तो वे तो जानते हैं कि यह राक्षस है, उसके फोर्स से वे चले गए, परंतु जब बहुत दूर आकाश में गए तो उनको भय हुआ। बहुत ऊंचा पर कोई चला जाए तो अपने आप भय होता है कि मैं गिर न जाऊं, तो अपने पतन के परिहार के लिए, बचने के लिए भगवान उसका गला पकड़ लिए, कंठ पकड़ लिए, कंठ पकड़ करके झूल रहे थे नीचे, कभी कभी देखते थे कि कई किलोमीटर नीचे, तो श्री कृष्ण अपने को बचाने के लिए उसका गला पकड़ लिए, गिर न पाऊं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद भगवान जैसे भारी लगे थे यशोदा के लिए, वैसे ही तृणावर्त के लिए भारी हो गए, और उसको यही भान है कि अरे मैं पहाड़ उठा करके आ रहा हूं, भूल से पहाड़ उठा लिया, ये कोई बच्चा नहीं है, इतना भारी वजन कि अब उड़ नहीं सकता था, गति स्तंभित हो गई। तो बार बार कृष्ण से कह रहा रे छोड़ रे छोड़ रे, हाथ से मार भी रहा था, छोड़ रे छोड़ रे, लेकिन अब वो बच्चा छोड़ने वाला था नहीं, जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ नहीं सकता है। जो कुछ भी कहता रहा, हाथ पैर पिटता रहा, लेकिन कृष्ण छोड़े नहीं, और उस भारी भार को, वजन को लेकर चलना उसके लिए असंभव हो गया। तब वो गिरने लगा बेहोश होकर के, भगवान ही गिराए। तो जहां गौएं बरसात में बैठती थी, पत्थर का प्लेटफार्म बना था गोकुल में ही, ला करके वहीं उसको पटके पत्थर पर, उसका शरीर चकनाचूर हो गया, पूरा खंड खंड में बिखर गया। बहुत दूर से आकाश से गिरा था पत्थर पर, तो इसीलिए शरीर सब टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। फिर गोप लोग वहां देखे, दौड़ कर आए, तो राक्षस के देह पर भगवान थे। अरे समझ गए कि यही उड़ा करके ले गया था, पर भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से बच्चा बच गया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बच गया। और आज ये कह रहे हैं नंद बाबा से कि वही उस राक्षस को मारा था, पहले हम लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आज अनुमान कर रहे हैं कि यही मारा था। भगवान कृष्ण सामने नहीं थे, वो तो परोक्ष में थे, चले गए थे कहीं खेलने के लिए या बछड़ा चराने के लिए कहीं होंगे। और नंद बाबा से बातें हो रही है गोपों की, तो फिर भी वे लोग कह रहे हैं कि यही यही असल असल यही कृष्ण मारा था तृणावर्त को। तो कोई कह रहा है क्वचित हयंगवस्तान्य, और कभी किसी समय जब इस बच्चे ने माखन चोरी की थी अपने ही घर में, तो माखन की चोरी में पकड़ा गया था, तो मात्रा बद्ध उलू खले, तो इसकी मां ने यशोदा ने इसको बांध दिया उखल में, पर उखल को घसीटता हुआ ये दो वृक्षों के बीच में गया, और उनको अपने बांह से, छोटे छोटे बांह से उखाड़ दिया। जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी लीलाएं हुई थी सबको कह रहे हैं, यही श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों को उखाड़ा था अपने बांह से। लोग कह रहे हैं बाहुभ्याम तो अपात, अपनी भुजाओं से गिरा दिया। वास्तव में भगवान ने गिराया था अपने कमर में तो लगी हुई रस्सी को खींचने से गिरे थे दोनों वृक्ष, लेकिन गोप लोग कह रहे हैं कि ये वो अपने बांह से पकड़ करके दोनों वृक्षों को झकझोर दिया, गिरा दिया। वो तो सुनी हुई बात कह रहे हैं, गिरे हुए वृक्षों को देखे थे लेकिन वृक्ष को गिरते हुए नहीं देखे थे, जब गिर गए तब देखे थे आवाज सुनकर के। तब तो कृष्ण कैसे गिराए उसको नहीं देखे थे, सुन करके कहते। सुन करके जो कोई कुछ कहेगा, कोई कोई कहेगा गिरा दिया हाथ से, किसी बहुत बड़े वृक्ष को कोई बच्चा हाथ से कैसे गिरा देगा, यही सब आश्चर्य हो रहा था। और वह बच्चा माखन चोरी में पकड़ा गया यशोदा के द्वारा, तो उसने बांध दिया मात्रा बद्ध। ये अद्भुत लीलाएं, यदि भगवान होता तो माखन की चोरी नहीं करता। माखन की चोरी में पकड़ा गया और उखल में बांध दिया गया, तो उखल में बांधा जाना ये भगवान का काम नहीं है, परंतु इन दो वृक्षों को गिरा देना है तो भगवान ही कर सकते हैं। तो बड़ा आश्चर्य में थे वे गोप सभी। इसी प्रकार से कह रहे हैं, जब यह 5 वर्ष का हुआ तब अपने आप बछड़ा चराने के लिए उत्सुक हो गया। बार बार आग्रह करता था, मैं गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा। तब मां यशोदा ने श्री बलराम को कहा कि इसको पहले बछड़ा चराने का अभ्यास कराना चाहिए, तुम साथ में जाओ और छोटे छोटे गाय के बच्चों को चराने की इजाजत हो गई कृष्ण को। कृष्ण कहते थे ये घर में रहना हमको अच्छा नहीं लगता है, मैं वृंदावन में घूमना चाहता हूं। तो बछड़े गौवें तो बहुत दूर वन में चली जाती थी, लेकिन बछड़े घर के आसपास ही बहुत कम दूर तक जाते थे, चरते थे। तो कृष्ण बलराम को इतना परमिशन मिल गया कि बछड़ा चरा सकते हैं। ये बछड़ा चरा रहे थे, गाय नहीं, गायों के बच्चों को चरा रहे थे। बालकर व्रत, सरामो बालकर व्रत, राम के साथ, श्री बलराम के साथ या और अन्य बालकों के साथ ये बछड़ा चराता था। एक दिन ऐसी घटना हुई कि हंतु कामम बकम दुर्भ्याम मुक्तो अरिम पाटयत, इसको मारने के नियत से एक राक्षस बगुले के रूप में आया, बकासुर, बक, बक बगुला को कहते हैं, बक रोती थी, बक जो बक करे उसको बगुला कहते हैं, बगुला के रूप में आया, बहुत बड़े बगुला के रूप में राक्षस बनकर आया और बहुत श्वेत था, उजला पंख थे उसके। तो गोप सखाओं ने देखा, बछड़े पानी पी रहे थे जमुना जी में और श्री कृष्ण पिला रहे थे, तो गोप बालकों ने देखा कि बहुत ऊंचा पत्थर का टुकड़ा है, कोई संगमरमर का टुकड़ा है बड़ा, दूर से देख रहे थे, और यह बगुला जैसा क्यों लग रहा है, ये पक्षी जैसा लग रहा है। तो भगवान कृष्ण को दिखाने लगे, ये देखो कृष्ण, ये कितना सुंदर संगमरमर है, मार्बल है, इस पर खेलना चाहिए। जो भगवान कृष्ण तो जानते थे कि ये बगुला है कि मार्बल है, वो जानते थे राक्षस है, तो भगवान कहे ठीक है मैं उसके निकट जा रहा हूं। वे गए आगे थे, वो लोग डर रहे थे, कुछ बगुला की आकृति को देख करके सखा डर रहे थे, पर भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के बिल्कुल किनारे गए, बिल्कुल किनारे उसके पास हो गए, तब वह एकाएक चोंच फाड़ करके विस्तार करके कृष्ण को निगलना चाहा। कृष्ण का नाम रहना चाहिए जीव पर, न कि कृष्ण को खा जाए, वो कृष्ण को खाना चाहता था। तो निगल गया कृष्ण को, चोंच में कर लिया, लेकिन भगवान कृष्ण इतना जलने लगे, इतना दाह उनके शरीर में हुआ कि वो आया करके नुगल दिया। उसने सोचा कि अरे ये आग है, मैं कैसे पकड़ लिया, या अंगार जैसा लगे। तो बकासुर निगलना चाहता था, लेकिन उसका कंठ जलने लगा, कोई आग को अंगार कर, अंगार को खा करके कैसे सुखी रह सकता है, तो जैसे खाया था उसी तरह से निगल दिया आया करके। थोड़ा सा गर्म भोजन खा लेने से हम लोग आया करने लगते हैं, ये अनुभव है ना सबको। तो इतना प्रचंड गर्मी है भगवान में, जो सूरज में तेज है, चंद्रमा में तेज है, अग्नि में तेज है, वो सब मुझसे निकलता है, भगवान कहते हैं। तो उस अपार तेज को सहन नहीं कर सका, उगल दिया, उगल करके फिर चोंच से प्रहार किया, मारना चाहा, चोंच को समेट करके कृष्ण पर आघात किया। तो उसी समय भगवान उसके दोनों चोंच को दोनों हाथ से पकड़ लिए और फाड़ दिए, फाड़ कर फेंक दिए। तो गोप लोग उस लीला को भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण एक दिन बगुले के रूप में आए हुए बक को, बकासुर को चीर कर फेंक दिया, निश्चित यही काम किया था। और फिर कह रहे हैं वत्सेषु वत्स रूपेण, एक राक्षस था बछड़े के रूप में आ गया, बछड़ों के झुंड में, ये ट्रिक था राक्षसों का, वे सोचते थे बछड़ा को चरा रहा है तो बछड़ा बन जाना चाहिए, जो बछड़ा बन करके भगवान के बछड़ों में मिल गया, तो उसको दिखा रहे थे भगवान कृष्ण बलराम जी से, देखिए एक नया बछड़ा कितना सुंदर है, ये किसका बछड़ा है। तो बलराम जी ने कहा होगा इसी ब्रज में किसी गोप का, तो पहचानते हम नहीं हैं, लेकिन कोई बछड़ा होगा कहीं से बरसाने से या खैरा से, कहीं का बछड़ा होगा, लेकिन वो बछड़ा देखते देखते एक विकराल सांड के रूप में हो गया, बहुत पहाड़ जैसा, और वो भगवान को मारना चाहता था। कभी अवसर पा करके इसको मारूंगा, लेकिन भगवान उसके पहले, मारने के पहले ही उसकी टांग पकड़ लिए और पकड़ करके घुमाए, वो उसी से मर गया। और मरे हुए देह को वृंदावन के कपित वृक्षों पर फेंका उन्होंने, तो उसके शरीर, मरे हुए शरीर के झोंके से कितने वृक्ष गिर पड़े, कपित वृक्ष, बड़े बलवान वृक्ष होते हैं, लेकिन कपित थानी चपाते, कपित वृक्षों को गिरा दिए भगवान। गोप लोग अब उन सब लीलाओं को आज यही कह रहे हैं कि ये कृष्ण ने किया। हत्वा रासव दैत्य न दैत्य तद बंधुश्च बलान्विता। एक राक्षस था, वो गधा के रूप में रहता था ब्रज में। वो सोचा कि हमको नहीं मारेगा, लेकिन श्री कृष्ण बलान्विता, बलराम जी के साथ थे, तो धनुकासुर को मार दिया। धनुकासुर को वास्तव में बलराम जी मारे, भगवान क्यों नहीं मारे? भगवान ने सोचा कि मैं धेनु पालन करने वाला हूं। धेनु का अर्थ गाय भी होता है, दूध देने वाली गाय को धेनु कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं धेनु का पालन करने वाला हूं, और यह धेनुक गधा के रूप में आ गया, तो इसका मैं वध नहीं करूंगा। श्री बलराम जी को कहा कि आप देख लीजिए। तो बलराम जी ताल वन में थे और कृष्ण भी वो आया। वो ताल वन में सारे ताल वृक्षों को रिजर्व रखा था, इसका कोई भी फल खा नहीं सकता है, कोई मनुष्य जाता ही नहीं था, कोई जाए तो उसी को खा जाता था, वो मनुष्य को, और कोई पशु भी घास चरने नहीं जाता था। बहुत सुंदर घास लगी थी ताल वन में, और वृक्षों में बहुत सुंदर फल लगे थे। उस समय भगवान थे गोवर्धन के पास, ताल वन से 4 कोस पश्चिम गोवर्धन में थे। वहां कुछ गोप थे, उस समय भगवान गाय चरा रहे थे। बछड़ा चराने से अब प्रमोशन हो गया था गाय चराने, तो पुरवैया हवा बह रही थी, इधर ताल वन से हवा जा रही थी, तो ताल के वृक्ष खूब पके थे, फल पके थे, तो बहुत सुंदर सुगंध जा रही थी। तो उन सखाओं ने कहा, कृष्ण बलराम बहुत सुगंध आ रही है, हमारी इच्छा है कि हम वृक्ष का फल खाएं। तो भगवान अपने सखाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए बलराम जी के साथ गए ताल वन। वहां जा करके बलराम जी बड़े बड़े ताल के वृक्षों को झकझोरने लगे, जबकि वहां कोई आदमी जा नहीं सकता था, लेकिन श्री बलराम जी गए, उनको क्या डर है, झकझोरने लगे। बहुत से फल गिरे, भदभद आवाज हुई, तो वो धनुकासुर जो गधे के रूप में था दौड़ करके रेखता हुआ आया, और उसके जितने भी परिवार के लोग थे सब गधा के रूप में ही रहते थे आए। आ करके देखा ये कौन मनुष्य इतनी हिम्मत कर रहा है, अपने पैरों से दुलत्ती मारा। दुलत्ती समझते हैं पीछे के दोनों पैर से मारते हैं, घोड़े या गधे इस तरह से मारते हैं, तो बलराम जी पर आघात किया। उसने सुना था, एक कवि कहते हैं कि उसने सुना था कि एक बार भृगु ऋषि भगवान को पैर से मारे थे, तो भगवान बड़ा सहलाए उस पैर को, तो सोचा कि हम जब पैर से मारेंगे तब हमको सहलाएगा, लेकिन उसके दोनों पैर को पकड़ करके श्री बलराम जी आकाश में घुमाए और उसके बाद ताल वृक्ष पर मारे, एक वृक्ष दूसरे को गिराया, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से सारे वृक्ष गिर पड़े। और पके हुए ताल फल से भर गया वो वन। अब निर्भय हो गए, उस गौवे लगी नई नई घास चरने, तो घास को छेक दिया था तो गौवे सब चरने लगी, और ताल फलों को वो ताल वन में रहने वाले कोल भीलादि खाने लगे। गोप सखा तो नहीं खाए, वे सब कहने वैत गधा के छुअल ना खाए। गधा मरे थे सब जगह, हजारों गधों को मारा भगवान ने, सब गधे के रूप में आए थे, इसीलिए उसी विधि से मारे, उनके पैर पकड़ करके घुमा करके फेंकते थे, वो मर जाते थे। इस तरह गधों के लाश से भर गया तालवन, इसलिए कोई सखा फल खाया नहीं, सब नीच जाति के लोग जो वन में रहते हैं वे खाए, और गौवे घास चरी। इस तरह से ताल वन को भगवान ने सुरक्षित किया और अब फल आने लगा नए ताल वृक्षों में। ताल वन में लीला की हत्वा रासव दैत्य तद बंधुश्च बलान्वित चक्रे ताल बनम क्षेमम परिपक्व फलादि फलान्वितम। और एक दिन यह लड़का गया था अपने भाई बलराम के साथ भांडीर वन में, प्रलम्बम घातयित्वग्रम, वहां एक प्रलम्ब नाम के राक्षस जो बड़ा भयानक था उसको मारा, उसको मरवाया बलराम के द्वारा। बलराम जी मारे प्रलम्बासुर को, लेकिन उसको गोप लोग कह रहे हैं कृष्ण ही मरवाया, क्योंकि बलराम जी को जब वो ले करके चला वो भी आकाश में उड़ने वाला था, वैसा खेल हुआ था कि प्रलम्बासुर गोप बन करके, गोप सखा बन करके कृष्ण को मारना चाहता था, तो उस समय खेल खेला जा रहा था, एक के बोस कृष्ण थे और दूसरे दल के बोस थे बलराम जी, और जो पार्टी हार जाती थी वो जीतने वाले को एक खास डेस्टिनेशन तक ढो करके ले जाता था, हारने वाला दम जीतने वाला ढोया जाता था। ये खेल चल रहा था और ये नया आ गया एक गोप प्रलम्ब राक्षस गोप सखा के रूप में आ गया, तो इसने कहा कि हम भी खेलेंगे, तो कृष्ण ने इसके दोस्ती को स्वीकार कर लिया, हाँ नया दोस्त आया है भी खेले। तो देखा कि कृष्ण बड़ा खतरनाक है, ये कई दैत्यों का वध किया है अतः इसके विरुद्ध नहीं रहना चाहिए, इसके भाई को मारना चाहिए। बलराम को मारने की चेष्टा किया प्रलम्बासुर, तो कृष्ण के पक्ष में हो गया और सोचा कि जीतना तो खेल में संभव नहीं है, हार जाना संभव है, तो कृष्ण के पक्ष से हो गया और खेलने लगा, तो वो हार गया श्री बलराम जी से। हारना तो अपने हाथ में था, जीतना मुश्किल था, तो हार गया। तो सोचा कि जब मैं हार जाऊंगा और जब मैं घोड़ा बनूंगा तो बलराम को उठा करके ले जाऊंगा, आकाश से पटक दूंगा, चाहे किसी पहाड़ में कंदरा में इसको मार दूंगा। तो हार गया तो श्री बलराम जी चढ़े उस पर, थोड़ी दूर ले जाना था, भांडीर बन आप लोग देखे होंगे कुछ लोग, वृंदावन के निकट ही है, तो प्रलम्बासुर बलराम जी को उठा करके चला, तो श्री कृष्ण ने संकेत किया ऐसे कि इसको मारो, मतलब यह राक्षस है, भगवान ने संकेत कर दिया। ये बात सखाओं ने बताया था ब्रज में कि कृष्ण ने इशारा किया, तो उसी को गोप लोग कह रहे हैं प्रलम्बम घातयित्वग्रम, घातयित्वा कि प्रलम्ब को इसी ने मरवाया था। तो बलराम जी को लेकर के चला, जिस प्रकार से प्लेन उड़ता है तो कुछ दूर रन वे में चलता है और उसके बाद पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर उड़ना है, तो वो जहां जाना था वहां नहीं गया, वो रन वे से फिर अपना स्पीड लिया लेकर के उड़ा बलराम जी को। बलराम जी को बड़ा भय हुआ, लेकिन भगवान ने कहा था कि राक्षस है इसको मारना, तो अपने स्वरूप का स्मरण हो गया बलराम जी को, अपने ऐश्वर्य का, ऊपर आकाश में जाकर के बहुत जोर से मुष्टिका से मारे उसके उसके मस्तक पर, उसका मस्तक फट गया। अब सब अब तो हवाई जहाज से बिगड़ गया, अब गिरा नीचे, जहां से खेल कूद हो रहा था वहां पर गिरा। सब गोप सखा देख रहे थे कि ये राक्षस मारा गया जो गोप सखा के रूप में आया था, सब लोग कृष्ण की बलराम जी की जय जयकार करने लगे। तो आज गोप लोग कह रहे हैं कि यही मरवाया था बलराम से। और अंत में कालिये दमन की लीला कह रहे हैं, आशी विषतमा हिंद्रम दमित्वा विमदम हरदार प्रसह्योदवास्य जमुना चक्रेशो निर्मलोदकाम निर्विशोदकाम। एक बहुत बड़ा सर्प जो जमुना में रहता था, इसका नाम कालिये था, बहुत विषैला सर्प और उसके 1000 फण थे, 1000 मुख से हमेशा आग उगलता था, विष उगलता था, तो जमुना जी में रहता था। तो जमुना जी का पानी विषैला हो गया था, उसको पी करके भगवान की गौएं और भगवान के सखा मर गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से देख करके सबको जिला दिया। गौएं जी गई, गोप सखा सभी जी गए, और इसके बाद भगवान कृष्ण एक कदम वृक्ष पर चढ़ करके और वहां से जमुना जी के दह में कूदे जहां काली रहता था। बहुत दूर में जल फैल गया, बहुत जोर से आवाज है गिरने की। कालियों को लगा कि कोई पहाड़ है, गिर गया है नदी में। पहाड़ कोई कोई उड़ते हैं जैसे मैनाक, तो उसने यही सोचा कि शायद मैनाक गिर गया। भगवान तीनों लोक का भार लेकर के गिरे थे तो बड़ा उद्विग्न हुआ, फुफकारता हुआ अपने स्थान से आया। वो सोचा कि कौन हमारे घर को डिस्टर्ब कर रहा है। जो आया तो देखा कि एक सांवला लड़का पीला कपड़ा पहना हुआ है, जिसके हाथ जिसके पैर कमल से भी सुकुमार है, वो तैर रहा है। लेकिन इस दुष्ट को कोई दया नहीं आई, कोई स्नेह नहीं उमड़ा। सुंदरता कृष्ण की देखा, वो आते ही कृष्ण के चरण में और हाथ में काटा। वो तो सोचता था कि एक बार काटने से ही ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जल में उसी तरह से तैर रहे थे, तब वह कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया, सांप से लपेट लिया पूरा। उस समय श्री कृष्ण बिल्कुल बेहोश जैसे दिख रहे थे। तट पर जो भी बच्चे थे, गौएं, वे सब रोने लगे कृष्ण की दशा देख करके। कृष्ण में कोई चेष्टा नहीं रह गई थी, कोई स्पंदन नहीं। लगता था कि वो डस दिया है, अब श्री कृष्ण में प्राण नहीं है। लेकिन भगवान ने ध्यान से देखा, तट पर सखा रो रहे थे और गौएं भी रो रहे थे, तो इसलिए जल्दी कालिये के बंधन से मुक्त हो गए। तो फिर कालिया उनको डसना चाहता था, लेकिन उसके फण को हाथ से झुका करके उसके फण पर चढ़ बैठे 1000 फणों पर और लगे नाचने। भगवान का नाच दो बहुत प्रसिद्ध है, कालिये के फण पर नाचना और यमुना जी के तट पर गोपियों के साथ नाचना। रासलीला में नाच और कालिये दमन में नाच बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रकार से भगवान नृत्य किया और वो 1000 फणों को उठाकर कृष्ण को डसना चाहता था भगवान के चरणों में, लेकिन चरण इतना तेज गति से चल रहे थे, जिस फण को वो उठाता था उसी पर चरण पड़ जाता था और खून निकलता था कालिये के फण से। उसके फणों को कुचलते हुए कृष्ण नृत्य कर रहे थे और उस समय भगवान के कमर में जो करधनी लगी थी किंकिड़ी, वो भी आवाज कर रही थी। नूपुर की आवाज हो रही थी, कंकड़ की आवाज हो रही थी। और कृष्ण का नृत्य देख करके भगवान के परम भक्त जो देवता हैं, जो गंधर्व, वे सब गाने के लिए आ गए आकाश में और सब अपना अपना बाजा लेकर के आ गए। कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे थे नाचते हुए, लेकिन वे सब लोग कृष्ण के नाच में सहयोग देने के लिए अपना बाजा लेकर के उपस्थित हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने लगी, और गंधर्व गाने लगे, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे, बहुत बड़ा मेला जैसा हो गया। तीर पर सभी ब्रजवासी जुटे हुए थे, सब देख रहे थे। तो कृष्ण इस तरह से नृत्य किए और उसको विमद किए, उसका मद दूर किए, कालिये को कुचल कर कहे जबरदस्ती कि निकल जाओ, यहां मत रहो, तुम वृंदावन में मत रहो। ये जमुना का पानी गौओं के लिए है, मनुष्यों के लिए है, अब इसमें रहते हो तो पानी विषैला हो गया, तुम यहां से निकलो। प्रसह्योद्वास बलपूर्वक भगवान ने निकाल दिया कालिये को, कह दिया तुम अपने स्थान पर रमणक द्वीप में चले जाओ। तो ये सब कर्म है नंद महाराज आपके पुत्र के, इसलिए हमको बड़ी शंका हो रही है कि ये कोई मनुष्य नहीं है। यह क्या है, कृपा करके आप बताने की चेष्टा की। दुष्ट तेजस्चान रागोस्मिन, आपके बच्चे में हमारा स्नेह, हमारा अनुराग, हमारा अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये दुस्तेज है। हमारा अनुराग आपके बच्चे में सर्वे सामनव ब्रजों के साथ, सभी ब्रजवासी आपके पुत्र से प्रेम करते हैं और सभी के प्रति आपके पुत्र का प्रेम है। तस्य औत्पत्ति का, उत्पत्ति का, जब से उत्पत्ति हुई है, जब से जन्म है, तभी से प्रेम है कृष्ण में, और कृष्ण का सबके प्रति प्रेम है। ये कैसे हुआ, कैसे संभव है? क्या यह परमात्मा है? आत्मा का ही प्रेम होता है, आत्मा से ही सब लोग प्रेम करते हैं। जितना हम लोग अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम इस बच्चे से है, कृष्ण से है। ये कैसे, ये क्या कारण है? क्या यह परमात्मा है? नंदते तनय स्मासु, आपके पुत्र का प्रेम अस्मासु हम लोगों के प्रति है, और हम लोगों का प्रेम कृष्ण में है, इसका क्या कारण है? नंद महाराज बताइए। श्री नंद महाराज सब गोपों की बात सुने और इसके बाद कहते हैं, सूर्यताम में बच्चों गोपा, आप लोग ध्यान से सुनिए। नंद बाबा कह रहे हैं श्रूयताम, अभी सुन नहीं रहे थे, तो सब लगे थे कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, यह किया, यह किया, यह किया, यह बहुत आवाज हो रही थी, इसलिए नंद बाबा ने कहा था पहले आप लोग सुने। श्रूयताम में मुझसे आप लोग सुनिए, चुप हुए तो नंद बाबा सुनाने लगे। बेतुत शंका और भके, आप सबकी शंका चली जाएगी, ऐसी बात बता रहा हूं। इस अर्भके, इस बच्चे में जो आपकी शंका है, सब शंका बीत जाएगी। आप लोग सुनिए, एनम कुमार मुद्दिश्य, इस बच्चे के प्रति बहुत बड़े गुरु गर्गाचार्य जी जो कहे हैं, उस बात को सुनिए। जब कृष्ण बलराम का नामकरण हुआ था, उस समय गर्गाचार्य जी ने कुछ कहा था, वो तो छिपा करके नामकरण हुआ था गोशाला में, सभी गोप बाहर चले गए थे उस समय, नंद बाबा ने किसी को नहीं बताया था, लेकिन आज सबके हृदय में शंका है कृष्ण के प्रति, यह भगवान है या ईश्वर है, मनुष्य नहीं है। सभी घबरा रहे थे, तो इसलिए नंद बाबा ने उस गुप्त बात को आज प्रकट किया। इस बच्चे के संबंध में गर्गाचार्य जी ने मुझसे कुछ कहा था, तो उस वचन को आप लोग सुनिए। गर्गाचार्य ने क्या कहा था, यह 8वें अध्याय में ये उक्ति है, उसी को नंद बाबा यहाँ रिपीट कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं। जो गर्गाचार्य जी ने कहा उसी बात को कह रहे हैं। त्रय वर्ण क्लास्यासन गृहण तनु जुगम तनु, गर्गाचार्य ने कहा है, हे नंद महाराज, आपका यह पुत्र अनुजुगम प्रत्येक युग में जन्म लेता है और युग के अनुसार इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। 3 वर्ण तो युग तो 4 है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलि युग। तो 4 युग के अनुसार इसके शरीर के रंग होते हैं, शुक्लो रक्तस तथा पीत। व्हाइट, रेड और येलो, पीत। इदानिम कृष्णताम गत, इस समय अर्थात द्वापर युग में यह सांवला बना हुआ है। कृष्ण नाम भी कृष्ण है। तो 3 युग और हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग, त्रेता और कलि, तो उसमें रंग होते हैं इसके, शुक्ल, रक्त और पीत। शुक्ल तो सतयुग में और रक्त लाल वर्ण त्रेता में, और बचा कलयुग तो पीत वर्ण। तो कलयुग में यह पीले रंग का बनकर आता है। तो यही है भगवान गौरांग महाप्रभु। और इदानी द्वापरे, द्वापर में कृष्णताम गत, यह कृष्ण वर्ण का है, सांवला है। तो गर्गाचार्य ने जैसे कहा था उसी को नंद बाबा रिपीट कर दिया। यह सब युग में जन्म लेता है, यह सतयुग में श्वेत वर्ण का होता है, त्रेता में लाल उसका रंग होता है शरीर का, और कलयुग में पीला शरीर होता है, और इस समय काला है, सांवला है। नंद बाबा की गुरु के वाक्य में बड़ी श्रद्धा थी, इसीलिए हू बहू गुरु के वाक्य को बोल रहे हैं। समझ नहीं रहे थे, गर्गाचार्य जी ऐसे विद्वान थे, बहुत संभाल करके बोले। वो वास्तव में गुरु वसुदेव जी के थे, मथुरा से आए थे महावन में नामकरण के लिए। वसुदेव जी ने भेजा था कि जा करके हमारे पुत्रों का, मतलब जो भी नाम, तो नाम नहीं था, जो रोहिणी से उत्पन्न हुआ है और देवकी से, दोनों हम लोग कृष्ण बलराम कहते हैं, तब नाम हो गया है, जा करके उनका नामकरण कीजिए, नाम संस्कार। नाम संस्कार भी एक संस्कार है, वो संस्कार गुरु के द्वारा होता है। नाम संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। तो गुरु को भेजा गया। दोनों क्षत्रिय थे, कृष्ण बलराम दोनों क्षत्रिय हैं, रोहिणी और देवकी से जन्म हुआ है श्री वसुदेव जी के द्वारा, परंतु वे रह रहे हैं वैश्य के घर में, नंद बाबा के हैं, तो उनका संस्कार क्षत्रिय विधि से होना चाहिए। इसीलिए वसुदेव जो चिंता हुई वो अपने गुरु को भेज दिए। तो गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा उनका बड़ा स्वागत किए और उनकी इच्छा हो गई कि इतने बड़े गुरु पधारे हैं आचार्य, तो इनके द्वारा मेरे पुत्रों का यहाँ संस्कार होना चाहिए, कृष्ण का और श्री बलराम का। बलराम जी भी गोप सखा गोप के रूप में ही रह रहे थे। तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं जदुवंशियों का आचार्य हूं, यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो ये खबर कंस को लग जाएगी, तो कंस सोचेगा कि ये गर्गाचार्य क्यों नामकरण किए, लगता है कि ये क्षत्रिय हैं, जदुवंशी हैं, वो लक्षण से सब पकड़ लेगा। अगर वो जान जाएगा कि ये आपका लड़का छोटा ये वसुदेव जी का लड़का है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आप अपने गुरु से इनका संस्कार करा लीजिए। गर्गाचार्य चाहते थे संस्कार करना, लेकिन फिर भी वो एकांत में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिनाई किया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब नंद बाबा ने स्वयं कहा एकांत में छिप करके नाम रख दीजिए, और फेस्टिवल करना, गान बजान करना या फीस्ट देना है हम बाद में कर लेंगे, केवल नाम रख दीजिए किसी तरह। तब गर्गाचार्य ने कहा तो ठीक है, एकांत में हो सकता है। तो नंद बाबा ने कहा इस समय गौएं सब चरने गई हैं वन में, कोई गोप नहीं है, केवल जसोदा और रोहिणी घर में है, वो अपने बच्चों को लेकर आएंगी गौशाला में, तो छिप करके आप नामकरण कर दीजिए। भगवान का नाम रखना है लेकिन वो भी चोरी से रखा जाएगा, तो गौशाला में श्री गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, श्री बलराम जी का नाम पहले रखा, कहा कि इसका नाम राम होगा, इसका नाम राम और बल और शंकरषण तीन नाम रखे, और कृष्ण का भी नाम। वो कहे कि इसके तो बहुत से नाम हैं, उन्हीं का यह वाक्य है, यह युग के अनुसार अपने शरीर का रंग बदल करके आता है, यह सतयुग में व्हाइट रहता है, त्रेता में लाल वर्ण का होता है, और कलयुग में पीत वर्ण का, इस समय द्वापर में कृष्ण वर्ण का है। तो भगवान का नाम भी बड़े ट्रिक से रखा जा रहा है। गर्गाचार्य ने नाम रखा हरि, वासुदेव और कृष्ण, ये तीन नाम रखा। तो उन्हीं के वाक्य को नंद बाबा बोल रहे हैं। तो पीत वर्ण जो है कृष्ण का, ये किस युग में रहता है? कल युग में, युगावतार कल युग के भगवान चैतन्य महाप्रभु, वे गोरे तो थे लेकिन गोरे कैसे थे, जैसे पीला पीला सोना रहता है, सोना के समान गौर थे। तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधा रानी का शरीर उजला नहीं है, उनका शरीर पीला। तो जो राधा रानी का स्वरूप है भगवान चैतन्य महाप्रभु, उसी रंग में अवतरित हुए थे। राधा रानी का शरीर का कांति और मन का भाव, कृष्ण के प्रति जो भाव है उस भाव के साथ और शरीर की पीत कांति के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे। किसी को शंका हो सकती है पीत वर्ण किसी दूसरे का होगा, लेकिन ये शास्त्र प्रमाण है कि यह पीत वर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए ही कहा गया। साक्षात श्री कृष्ण नदिया में, नवद्वीप में, मायापुर गांव में जन्म लिए हैं। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु को सारा जगत जानता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में एक दिन कहा था कि पृथ्वी त्याछे जत नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार हैबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने गांव हैं और शहर हैं सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। वे कृष्ण हैं साक्षात, तो आज सब जगह कृष्ण का प्रचार है। पहले लोग नहीं जानते थे गौरांग महाप्रभु, लेकिन अब जानने लगे सब जगह। नित्यानंद प्रभु के साथ भगवान खड़े हैं चैतन्य महाप्रभु इस मंदिर में, तो इस समय सारे जगत में सब जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त चाहते हैं कि और अधिक से अधिक प्रचार हो। भगवान कृष्ण ये प्रच्छन्न अवतार लिए, छिप करके अवतार लिए, अवतार लिए लेकिन एक तो रंग बदल करके, उनका सांवला रंग है लेकिन अपने रंग को छिपा लिए, गोरा रूप बन करके आए, पीला शरीर श्री राधा रानी के समान। और उनका प्रसिद्ध अस्त्र शस्त्र है चक्र या गदा लेकर के आना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वे कुछ अस्त्र नहीं लेकर आए, खाली हाथ आए और हाथ को ऊपर करके सबसे यही कहते थे हरि बोलो, कृष्ण बोलो, कीर्तन करने के लिए कहे। तो कीर्तन ही इस युग का युग धर्म है, भगवान इसके प्रचार के लिए आए। और स्वयं भगवान है लेकिन अपनी भगवत्ता छिपा करके आए, भक्त बन करके आए। वे कृष्ण के विरह में रोते रहते थे, कृष्ण का नाम गाते थे हमेशा, कृष्ण की कथा सुनते थे। कोई उनको भगवान कह देता था तो वे रंज होते थे, वे अपना कान बंद कर लेते थे। विष्णु कोई कहता था कि आप विष्णु के अवतार हैं तो ये सुनना नहीं चाहते थे। ऐसा भी हुआ कि वे नदी में कहीं कूद जाते थे आत्महत्या करने के लिए, उनको कोई भगवान कहता था तो। भक्त का स्वरूप है, उसे कभी भी अपने को भगवान नहीं कहना चाहिए, वो दास है। तो चैतन्य महाप्रभु दास रूप में लीला कर रहे थे। इसी से भ्रम हो जाता है लोगों को। ये कैसा भगवान है जो कृष्ण के लिए रोता रहता है। बंगाल में तो लोग कुछ कहते हैं कि ये तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु का दिमाग खराब हो गया था, कृष्ण कृष्ण कह करके रोते रहते थे। लेकिन यही सिखाने के लिए अवतार हुआ था, और यह अवतार बहुत निकट में हुआ था, आज से लगभग 525 वर्ष पहले। भगवान का सबसे निकटतम अवतार हुआ। हम लोग उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में हैं, और भगवान के नाम का आश्रय है, जपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। तो गर्गाचार्य जी ने और सब बातें कही, नंद बाबा सुना रहे हैं। पहले तो रंग के विषय में सुनाए कि गर्गाचार्य ने कहा कि चारों युगों में आपके पुत्र का चार रंग होता है। और कहा प्रागयम वसुदेव से जात क्वचित तवात्मज श्रीमान वासुदेव इति अभिज्ञा संप्रचक्षत। उन्होंने कहा कि हे नंद महाराज, आपका बेटा कभी पहले वसुदेव जी के यहां भी जन्म लिया था। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव कहते हैं, तो इसका एक नाम वसुदेव भी रखे हुए। नंद बाबा इसका परपर्ट नहीं समझे कि पहले कभी वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था, मतलब इसी अवतार इसी जन्म में, ये नहीं समझे। इसमें कभी लिया होगा, जब चारों युग में जन्म लेता ही रहता है तो कभी जन्म लिया होगा वसुदेव जी के यहां। नंद बाबा वो गर्गाचार्य तो ठीक से बोले, प्राक अयम वसुदेव से क्वचित जातस्त आत्मज, आपका बेटा तवात्मज कभी पहले वसुदेव जी के यहां भी जन्म लिया था, इसीलिए लोग इसे वासुदेव कहते हैं, जानकार लोग। नंद बाबा ये नहीं समझे कि इसी जन्म में पहले मथुरा में वसुदेव जी के घर जन्म लिया और वही यहां पहुंचाए, बिल्कुल नहीं समझे। जीवन भर नंद बाबा नहीं जान पाए, वे ही जानते हैं कृष्ण हमारा पुत्र है और वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, इसीलिए वसुदेव जी प्रेम करते हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब नंद बाबा यह सोचते थे, पहले कभी बेटा उनका बना है तो ठीक है, उस दाते से अभी भी वे पिता हैं तो ये अच्छा है ना। वसुदेव जी राजा हैं, क्षत्रिय हैं, अगर वे कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं तो कृष्ण का ये भाग्य है, अच्छा है, ठीक है। वो गांव में गाय बकरी चराया है अब तक, तो मथुरा जाएगा पढ़ेगा और क्षत्रिय कन्याओं से उसका विवाह होगा, सिटी में रहेगा, ठीक है, अब विकास होगा कृष्ण का। नहीं तो गांव में रहकर ही गाय चराना, बकरी चराना, खेल कूद करना, बिना पढ़े लिखे रह जाता है, तो अच्छा है मथुरा गया। तो कभी कभी नंद बाबा ये सोच करके संतोष करते थे। वसुदेव जी पूर्व जन्म का संबंध मानते हैं कि हमारा बेटा पहले रहा है, तो अभी भी बेटा ही है। नंद बाबा यही परपट समझ रहे थे। गर्गाचार्य जी की बात को समझे नहीं और हूबहू संस्कृत में बोल दिए कि गर्गाचार्य ने ये कहा, तो प्राक का अर्थ नहीं समझे कि पहले वसुदेव जी के घर में जन्म लिया था। हम लोग तो जानते हैं कि पहले वसुदेव जी के यहां जन्म हुआ देवकी से और वही कृष्ण को गोकुल पहुंचाए, पर जिनके यहां पहुंचाया गया कृष्ण को वे नहीं जानते हैं कि पहले जन्म हुआ था वसुदेव जी के यहां। ये भी कृष्ण के एक लीला का माधुर्य है। कमाल की बात है कि बिल्कुल सत्य भी बोलना है गर्गाचार्य को, और यह भी है कि नंद बाबा सही सही अर्थ न जान पावे, दोनों बात रह गई। नंद बाबा समझ भी नहीं पाए और गर्गाचार्य सत्य बोले। और भी बहुत बातें उन्होंने कहा कि इस लड़के से जो प्रेम करेंगे उनके शत्रु कभी उनको डिफीट नहीं कर पाएंगे, बाहरी भीतरी शत्रु। बाहर के शत्रु हैं जैसे जो प्रसिद्ध है, हमारे नुकसान चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वे शत्रु भी डिफीट रहते हैं। और भीतर के शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब नष्ट होंगे। यदि कृष्ण से प्रेम करेंगे तो कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पाएंगे। जैसे भगवान जिस पक्ष में रहते हैं उन भक्तों को या देवताओं को असुर परास्त नहीं कर सकते, असुर डिफीट नहीं कर पाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति इस बच्चे से प्रेम करेंगे उनकी सर्वत्र विजय होगी, कहीं डिफीट नहीं होंगे। कल गर्गाचार्य जी बार बार ये कहे हैं ते सुते आपके पुत्र से जो प्रेम करेंगे, आपके पुत्र आपका आत्मज कह करके नंद बाबा को भ्रम में डाल रहे थे। नंद बाबा यही समझे कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और अंत में उन्होंने कह दिया कि हे नंद महाराज, आपका बेटा, आपके पुत्र में जो गुण है, जो श्री है, जो कीर्ति है, अनुभव है, सब गुणों में केवल नारायण ही इसकी क्षमता कर सकते हैं, नारायण समो गुण ही। इस विश्व में केवल एक नारायण है जो कृष्ण के समान है। तो वास्तव में गर्गाचार्य का यह वाक्य यह अर्थ रखता है कि केवल नारायण ही इसके समान हैं। गुणों में जो उन्होंने कहा था गोपाया सुसमाहित, उसको नंद बाबा थोड़ा बदल रहे हैं। तत्कर्मसु न विस्मय, जब नारायण के समान है तो इसके कर्मों में संदेह नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा था कि गोपाय सुसमाहित, हे नंद महाराज, आप अपने पुत्र को समाहित एकाग्र चित्त से गोपाय इसकी रक्षा कीजिए, अपने सांवले पुत्र की आप रक्षा कीजिए। उसको नंद बाबा कह रहे हैं तत्कर्म सुन विस्मय। गोपों से कह रहे हैं कि इसके कर्मों में आप लोग संचय मत कीजिए। जब गर्गाचार्य यह बात कह करके अपने घर चले गए तब आप क्या मानते हैं, गोपों ने पूछा, तब आपका क्या विचार है कृष्ण के प्रति? तो नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी यह बात कह करके जब चले गए तो मैं मन्ने नारायण श्यांसम, मैं नारायण का अंश मानता हूं कृष्ण को। जो अक्लिष्ट कारणम, जो इतना इतना कर्म कर रहा है, बड़े ही आराम से बड़े बड़े असुरों को मारा कृष्ण, तो कृष्ण को मैं मान रहा हूं नारायण का अंश। तो ये सोच करके आप लोग भी विस्मय मत कीजिए, कृष्ण को नारायण का अंश मानता हूं। वास्तविक सत्य ये है कि नारायण कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण परिपूर्णतम ईश्वर है, भगवान है, स्वयं भगवान, और नारायण भगवान उनके अंश हैं। या अन्य कोई भी अवतार जैसे राम, नरसिंह, वामन, परशुराम, मत्स्यावतार, सभी कृष्ण के अंश हैं, ये वास्तविक स्थिति है। लेकिन नंद बाबा आचार्य गर्ग के बाद से ये मान रहे हैं कि कृष्ण नारायण के अंश हैं। दोनों ही ठीक है, अंश अंशी में भेद नहीं है। यह सुन करके गोप लोग बहुत खुश हुए, बहुत मुदिता, बहुत प्रसन्न हुए, तो वे नंद बाबा को बहुत सा उपहार दिए, उनकी पूजा किए। कोई कोई सोने की मुद्रा लेकर के आए, विविध प्रकार के अलंकार लाए, कपड़ा लाए, और कृष्ण को भी बहुत भेंट दिए। अलंकार, वस्त्र और मुद्रा ये सब दान दिए कृष्ण को। पर भाव यही रहा कि ठीक है नारायण का अंश है, लेकिन फिर भी हमारा सखा है, बेटा है, और हमारे गाय का चरवाहा है। ये ब्रजवासियों का भाव है, कृष्ण कुछ भी ऐश्वर्य दिखाए लेकिन उनका माधुर्य भाव कभी लुप्त नहीं होता है। माँ यशोदा के सामने वे कई बार अपना ऐश्वर्य दिखाए, जैसे विराट स्वरूप या मुख में ब्रह्मांड दिखाए, लेकिन माँ यशोदा यही मानती थी हमारा मति का भ्रम है, हमारा दिमाग खराब है, क्या देख रहे हैं, ये बच्चे के मुख में क्या देख रही हूं। तो ब्रज में शुद्ध भक्ति है, ऐश्वर्य दिखाते हैं कृष्ण लेकिन उनका भाव बदलता नहीं है ब्रजवासियों का। उसी भाव को हमें ग्रहण करना चाहिए। काल बहुत बलवान है और काल मनुष्यों की, सभी जीवों की आयु का छेदन करता रहता है, तो और आयु का नाश करता रहता है, इसका मतलब शरीर की शक्ति, शरीर में जवानी आदि को भी नष्ट कर देता है। अतः जब तक शरीर में युवावस्था है, शक्ति है, तो कृष्ण की भक्ति कर लेनी चाहिए। फिर शरीर अक्षम हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता। एक श्लोक में कहा गया है नीति शास्त्र में, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्, क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धन। एक एक क्षण है, क्षण मतलब टाइम का छोटा अंश भी बेकार नहीं जाना चाहिए, क्षण क्षण पढ़ना चाहिए। ये नहीं विचार करना चाहिए अच्छा कल पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी इस काम में है, अभी उस काम में है, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में सुन लेंगे, नहीं। क्षणशः एक एक क्षण पढ़ने में लगाना चाहिए। और क्या पढ़ने में? भागवतम, श्रीमद् भागवतम, वैदिक ग्रंथ जो हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं भगवान के तरफ बढ़ने के लिए। हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, तो भगवान को पाने में जो ग्रंथ मदद करते हैं और जो संग हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ाते हैं, वही संग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अब कुछ दिन भक्ति करेंगे और एक दिन इधर उधर घूम लेंगे, नहीं। एक एक क्षण उपयोग करना है पढ़ने में। और जो व्यक्ति पढ़ने में इस तरह से लगता है वो भगवान को पा लेगा। ये ग्रंथ हमारी सहायता करेंगे और ग्रंथों के जानकार साधु महात्मा भी मदद करते हैं। भगवान चाहते हैं कि सभी मनुष्य हमको पा जाएं, उनकी ये योजना है, इसी के लिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसी के लिए विविध अवतार लेते हैं कि हमको लोग जान जाएं। लेकिन कैसे जानेंगे? तो सबसे पहला उपाय है पढ़ना, भगवान के नाम का जप करना। तो पढ़ना चाहिए, एक एक क्षण पढ़ने से तब विद्या आती है। और एक एक कण, एक एक पैसा इकट्ठा करने से धन प्राप्त होता है। इसी नीतिकार कहते हैं, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधे। एक एक क्षण का उपयोग करके विद्या कमानी चाहिए और एक एक कण बटोर करके, इकट्ठा करके धन अर्जन करना चाहिए। अगर आप क्षण छोड़ेंगे तो क्षण त्यागी कुतो विद्या और कण त्यागी कुतो धनम। यदि एक क्षण भी बर्बाद करेंगे तो विद्या कहां से होगी? और आज कण कण छोड़ते जाएंगे कि अच्छा इतना ही ज्यादा जा रहा है ना, कण छोड़ेंगे धन कैसे बढ़ेगा? तो जैसे धन कमाने में एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी तरह से विद्या कमाने में एक एक क्षण पर ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ भागवत के श्लोक पढ़ते हुए, गुनगुनाते हुए या मनन करते हुए, चिंतन करते हैं बीतना चाहिए। समय तो बीत ही जाएगा, चाहे जिस काम में रहेंगे ये टाइम बीत जाएगा। और बीता हुआ समय फिर पैसा से लौटेगा नहीं। इसीलिए जो समय भगवान ने हमें दिया है युवावस्था दिया है, शरीर में शक्ति दिया है, तो इस शक्ति का उपयोग कर लेना चाहिए भगवान को जानने में और उनसे प्रेम करने में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।
कृष्ण महाराज,
कोई भक्तों का प्रश्न है?
एक भक्त पूछ रहे हैं, महाराज आपका प्रभुपाद जी के साथ हुए कुछ प्रसंग को सुनाइए।
नहीं, ये सब चीज प्रणाम है, वो अपना गुणगान हो जाता है। प्रभुपाद जी के नाम पर अपना गुणगान होता है, इसीलिए ठीक नहीं है।
हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन बोले, मगर कुछ भक्त पूछते हैं कि कभी भी हमने सुना नहीं कि वो हरिनाम का जप माला के ऊपर किया करते थे। उन्होंने कहां पे उल्लेख किया, जैसे चैतन्य चरितामृत में कि किसी को उन्होंने उपदेश दिया या आदेश दिया माला के ऊपर जप करने के लिए, तो कृपया मार्गदर्शन करें।
तो वे स्वयं माला पर जप करते थे, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। जब संन्यास ले लिए चैतन्य महाप्रभु, तो पूरी आ गए और पुरी से जब उन्हें दक्षिण भारत जाना था, तो विचार होने लगा। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी विचार करने लगे, कोई आपके साथ जाना चाहिए जो आपके कमंडल को और त्रिदंड को ढोया करेगा, क्योंकि आपका हाथ तो कीर्तन करने में पैसा रहेगा, उठाने में या जप करने में लगा रहेगा। वो ये कहते हैं, आप माला जपते रहेंगे तो आपका त्रिदंड और कमंडल और बहिर्वास कौन लेकर के चलेगा, ये सब जहां छूटेंगे वहीं छूट जाएंगे। तो उससे साफ सिद्ध होता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जप करते थे और उन्हीं के उपदेश के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी जप करने के लिए सबको कहते हैं। ये तो प्रकट बात है ना, प्रभुपाद जी जप करते थे, उनका जप मिलता भी है मशीन में और माला पर जप करते थे। तो आप यदि और पीछे जाना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जप करते थे और चैतन्य महाप्रभु के सेवक पार्षद सिक्स गोस्वामी ये जप करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कीर्तव, सभी संख्या पूर्वक नाम कीर्तन करते थे। नाम जप भी एक कीर्तन है, लेकिन संख्या पूर्वक गिनना, गिनते हुए, तो माला पर ही संख्या गिनी जाती है ना, तो सभी जप करते थे, ये प्रमाण है, ये संदेह नहीं रहना चाहिए। माला पर जप करना चाहिए, माला जपते हैं माला जपने के लिए नहीं, उस पर नाम जपने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं माला पर जप करते थे और सबसे कराते थे। तो जप करने वाले को क्या मेहनत पड़ती है माला रखने में, बहुत सामान घर में रखे हुए हैं, एक तुलसी की माला रखने में क्या परिश्रम पड़ता है, कुछ लोग कह देते हैं कि हम माला पर नहीं जपते हैं, लेकिन ऐसे ही हम 24 घंटे जपते हैं, वो झूठी बात है। कोई नहीं ऐसे जप करता है, माला पर ही जप करते हैं वो करते हैं। माला पर तो पता लगता है कि व्यक्ति जप कर रहा है, और बिना माला के वो 24 घंटे क्या कर रहा है वो भगवान जाने। हाँ, एक बात है कि माला पर जप किया जाता है, नहीं तो घड़ी से जप किया जाता है। घड़ी से जैसे आप अनुमान कर लेते हैं एक माला जप करके कि एक माला जपने में हमको इतना मिनट लगता है, तो गुणा करके फिर उतना टाइम तक जपेंगे तो उतनी माला मानी जाएगी। एक खास करके कार चलाते समय जो जप करना चाहते हैं उनको चाहिए घड़ी से जप करें। माला हाथ में लेने पर कभी स्टीयरिंग इधर उधर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए ये भी एक विधि है घड़ी से जप करना। लेकिन वो माला पर जप करने के बाद सेकेंडरी चीज है, मुख्य है माला पर जप करना। और यह जप श्री भगवान शंकर भी करते हैं माला पर, सरस्वती माता जी करते हैं, नारद जी करते हैं। वैसे मुख्य उनका कीर्तन वीणा पर होता है, कीर्तन करने के लिए वीणा रखे हैं, लेकिन जप करते हैं माला पर। सरस्वती जी माला पर जप करते हैं, भगवान शिव करते हैं, सभी देवता माला रखे हैं। इसलिए हम लोगों को भी माला रखना चाहिए, चाहे सन्यासी हो या चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, माला रखना ही चाहिए। एक भक्त ने कहा है, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा है, पतवारी माला पकड़ हरिनामय कर नाम, तरि संसार पयोधि को और न को उपाव। हरिनामय कर नाम, ये भगवान का नाम यही नौका है, तो इस नौका को ठीक से चलाने के लिए पतवार पकड़ो। पतवार कहते हैं नाव को खेने के लिए, चलाने के लिए एक काठ का बना हुआ होता है, उसको पतवार कहते हैं। कर्ण तो नाम की पतवार पकड़ो, हरिनामय कर नाम, भगवान के नाम को नौका बनाओ। तरि संसार पैरोधि को, इस तरह से संसार जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाओ। और न को उपाय, और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल अलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरम। तो किसी के पास मान लीजिए नौका है, तो बिना पतवार के कैसे चलाएगा, इधर उधर भ्रमता रहेगा, डूब सकता है। तो पतवार रखना चाहिए, और कम से कम 16 राउंड तो चलाना ही चाहिए। सत्य है जिसके पास माला है उनका नाम जब हो ही जाता है भगवान की कृपा से। और श्रील प्रभुपाद जी यही बताते थे दीक्षा देते समय, चांट 16 राउंड्स एट लिस्ट, कम से कम 16 माला जप करो महामंत्र का, यही कहते थे दीक्षा के समय, यही बोले। और हमसे पहले पूछे व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो मैं बिल्कुल नहीं समझा। रूल्स तो समझ रहा था लेकिन रेगुलेशन नहीं समझा। जब श्रील प्रभुपाद से मैं एकांत में पूछा उनके रूम में कि आपने रूल्स और रेगुलेशंस कहा, तो रेगुलेशंस का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद जी उसको संस्कृत में समझाए हमको, यम नियम। तो मैं पढ़ा था भागवत में तो समझ गया, यम नियम। यम का अर्थ है जिसको करना ही है सब सबको, और नियम का अर्थ है देश काल व्यक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी चार यम बताए हैं, यम उसी में नी लगा हुआ है नियम। तो यम है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये यम है, इसको करना ही है किसी भी देश में और किसी भी समय, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे नो मीटिंग, नो मीट ईटिंग है तो सभी देश में, सभी काल में, ठंडा के दिन में, गर्मी के दिन में, चाहे अमेरिका में हो कोई, चाहे ऑस्ट्रेलिया में या भारत में, ये मांस भक्षण नहीं करना है, ये यम है। ऐसा नहीं कि कोई महाराष्ट्र में है तो नियम वो यम का पालन कर रहा है, और कश्मीर में जाएगा तो कहेगा ज्यादा ठंडा है इसलिए हम मांस थोड़ा चला लेते हैं, नहीं। सारे जगत में सबके लिए सब समय जो पालन जरूरी है उसको यम कहते हैं। नो इलिसिट सेक्स, और इलिसिट सेक्स से नहीं करना है, अवैध है। जो विवाह से अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ संबंध है या स्त्रियों का पुरुषों के साथ संबंध, उस सबके लिए ये ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य से शरीर की शक्ति बनी रहती है और मन बलवान रहता है, अतः किसी को भी प्रभुपाद जी बताते थे नो इलिसिट सेक्स, इलिसिट, लिसिट नहीं, लिसिट तो वैध है, तो विवाहिता पत्नी के साथ व्यक्ति संतान उत्पन्न करने के लिए संग कर सकता है, गृहस्थों के लिए भी प्रभुपाद जी बताते थे नो इलिसिट सेक्स, उनके लिए भी संतान उत्पन्न करने के अतिरिक्त जो संग है वो भी अवैध है, वो तो अपनी मृत्यु के समान है। गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शरीर में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है वीर्य, इसका अपव्यय नहीं होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बताते थे। यम में ब्रह्मचर्य, उसी को इलिसिट सेक्स कहते हैं, नहीं करना है, और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। और जुआ ऐसा नहीं है कि ठीक है मंदिर में नहीं हम खेलते हैं, घर में थोड़ा चलेगा क्या हर्ज, कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी समय में और किसी भी देश में नहीं खेलना है। जुआ नहीं, मतलब अवैध तरीके से धन का संग्रह नहीं करना, झूठ कपट से धन इकट्ठा नहीं करना है, यही है नो गैम्बलिंग का मतलब। नो इंटॉक्सिकेशन, और कोई बेहोश करने वाली वस्तु नहीं खाना पीना। हम लोग पहले से ही बेहोश हैं, भगवान को भूले हुए हैं, और ऊपर से और बेहोश करने वाली चीज खाएंगे जैसे धुआं या शराब, तो हमारी स्थिति और बिगड़ती जाएगी। इसीलिए नहीं करना है। और श्रील प्रभुपाद जी उस देश में इस बात का प्रचार कर रहे थे जहां यही सब जीवन है, जहां लोग मांस के बिना नहीं रहते हैं, जहां इंटॉक्सिकेशन चलता ही रहता है और अवैध स्त्री पुरुषों का मिलन चलता रहता है, उस देश में बात बताए। ये तो भारत में बाद में आया है, ये अब पहले से ही है शास्त्रों में। ये चार नियम महाराज परीक्षित ने दिया था कलयुग को वास स्थान। जब कलयुग को उन्होंने सोना दिया रहने के लिए, तो कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। पहले तो परीक्षित महाराज ने कह दिया तुम हमारे देश से बाहर चले जाओ ब्रह्मावर्त से, तो कलयुग कहा कहां जाऊं, सब जगह तो आपका ही शासन है। तो उन्होंने विचार करके दिया स्थान, ये चार स्थान जहां व्यभिचार होता है, स्त्री पुरुषों का अवैध कनेक्शन रहता है, वहां रहो। जहां जीव हत्या होती है, मांसाहार होता है, वहां रहो। जहां लोग मद्य पीते हैं वहां रहो। तो कलयुग को कुछ संतोष हुआ। कुछ लोग चालू कर दिए थे परीक्षित के राज्य में कुछ इंटॉक्सिकेशन लेना, अवैध संग आदि करना, तो एकाध सीट उसको मिल गई गुजारा करने के लिए। अब इस कलयुग में तो उसी का राज्य है, सीट की क्या बात है। फिर भी हम भक्तों को एक प्रयास रखना चाहिए कि कलयुग की जो सीट है उससे बचते रहे। एक बहुत सुंदर बात इस्कान में है कि प्रत्येक स्त्री को माता जी कहा जाता है, पर केवल कहना ही नहीं चाहिए, मानना चाहिए माता जी। व्यवहार में आना चाहिए। बहुत पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए, बहुत पवित्र सेक्रेट दृष्टि से। कोई भी स्त्री अपनी मां के समान है या बहन के समान है। जैसे मां के प्रति कभी दुर्विचार नहीं हो सकता है ना, ऐसे ही किसी भी नारी के प्रति सम्मान की भावना रहे, पूज्य की भावना रहे। पुराण में यह लिखा गया कि जत्र नारियः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने प्रचलित विधि चलाया जो हमारे संस्कृति की देन है। उन्होंने विवाह संबंध चालू किया विदेश में। यह पवित्र संबंध है। एक लड़की का एक लड़के से संबंध होना शास्त्र विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करके और ब्राह्मणों के समाज में भक्तों के समाज में दोनों शपथ करते हैं कि लड़की कहती है जो संस्कृत में मंत होता है और लड़की के पिताजी कहते हैं मंत्र पढ़ते समय कि हम विष्णु स्वरूप इस वर को अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या को अर्पित कर रहे हैं, वर जो है वो विष्णु स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। इस प्रकार की बातें जनरल हैं विवाह में जो मंत्र पढ़े जाते हैं। शपथ करते हैं कि हम कभी भी ये डिवोर्स तलाक आदि नहीं लेंगे। तलाक शब्द हमारे वैदिक ग्रंथों में है ही नहीं, ये तो मुसलमानों के राज में चालू हुआ शब्द, ये तलाक शब्द और डिवोर्स ये सब अंग्रेजी शब्द है, हमारे संस्कृत साहित्य में शब्द है ही नहीं। कभी कोई कन्या कभी कल्पना नहीं करते थे कि कभी मैं पति से डिवोर्स्ड हो जाऊंगी, कभी नहीं। अगर होता तो वो शब्द रहता, कि शब्द है ही नहीं। जिस कार्य का व्यवहार होता है वही शब्द रहता है। यह अखंड संबंध चलना चाहिए। पत्नी हमेशा पति की सेवा में रहे और पति के नाते पति के माता और पति के पिताजी, और जिसको अंग्रेज लोग कहते थे फादर इन लॉ, कानून में पिता, कानूनी पिता, इन लॉ, लॉ के अनुसार पिता है। नहीं, हम तो कहते हैं कि वो नेचुरली पिता है। जब पिता का पिता है तो हमारा पिता है और पति की माँ हमारी माँ है और मदर इन ला नहीं है, वो मदर है। तो आजकल भारत में सब जगह लोग ऐसा कह देते हैं, अगर पूछा जाए वो आपके क्या क्या है तो वो फादर इन लॉ है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का शब्द नहीं है। पति का संबंध जो है वही पत्नी का संबंध होता है, या पत्नी का संबंध जैसा है उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। पत्नी की माँ हमारी माँ है, पत्नी के पिताजी हमारे पिता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है जब भगवान राम वन में चले गए तो उनको मनाने के लिए भरत जी गए पीछे से। भरत जी जब जग गए तो जनकपुर से जनक महाराज जी भी आए चित्रकूट। एक बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई तो उसमें सीता जी अपने पिता से मिलती हैं तो पिताजी बहुत प्रसन्न थे और कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है, मतलब पति का कुल और अपना कुल, हमारा कुल भी पवित्र हो गया है। तुम जो अयोध्या नहीं रही, वन में आ गई, तो यह सच्चा धर्म निभाया। पति के साथ जंगल में रहना तुमको अच्छा लगा और अयोध्या का वैभव, अयोध्या का सुख तुमने छोड़ दिया। तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, यह सत्य है। कन्या पतिव्रता हो तो दोनों कुल को तारती है, पति के कुल को और पिता के कुल को। भगवान राम जब वन में चल रहे थे, रास्ते में वन जाने के लिए, तो किसी गांव में रुकते थे, गांव के बाहर कोई बरगद का वृक्ष रहता था, तो वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे। सीता जी को परिश्रम हो रहा था तो विश्राम करने के लिए, तो गांव के लोग दौड़ करके पानी लाते थे पीने के लिए, आग्रह करते थे कि आप रुक जाइए और पानी पी लीजिए, गांव में चलने के लिए आग्रह करते थे। तो भगवान कह देते थे पिताजी की आज्ञा है वन में रहने की, इसलिए गांव में मैं नहीं जाऊंगा, 14 वर्ष तक किसी गांव में नहीं जाना, किसी शहर में नहीं जाना। जो गांव में नहीं जाते थे तब वहीं पर गांव की स्त्रियां आ जाती थी, तो पुरुष लोग तो भगवान राम से लक्ष्मण जी से बात करते थे और स्त्रियां सीता जी के पास आ जाती थी, तो उनसे पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं, ये जो दोनों लड़के, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं। तो सीता जी बताती हैं कि ये जो छोटे हैं गोरे हैं, ये हमारे छोटे देवर हैं, ऐसे बोलती हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे, हमारे छोटे देवर हैं, बड़े देवर तो भरत जी हैं, इसीलिए छोटे देवर कह रहे हैं। और भगवान के तरफ देख करके थोड़ा केवल आंचल से मुंह को ढक करके मुस्कुरा देती हैं, ऐसे साफ कही नहीं कि ये मेरे पति हैं। परंतु आजकल की अगर औरत रहेगी तो कहेगी वो हमारे मिस्टर हैं, ऐसे कह देगी, ये हस्बैंड है। वे ऐसे नहीं बोल रही हैं, उन्हें संकेत से कह दिया और वो समझ गई, गांव की स्त्रियां समझ गई उसी से, संकेत से समझ गई कि ये पति है। फिर पूछते हैं क्यों वन में जा रहे हैं आप लोग, तो सीता जी ये नहीं कहते हैं कि हमारे ससुर ने कहा है वन में जाने के, तो चुपचाप रह जाते, कोई शिकायत नहीं। और भगवान से पूछा जाता है कि आप वन में क्यों जा रहे हैं, तो पिताजी ने हमें जंगल का राज दिया है, फॉरेस्ट विभाग ले रखा है, कोई निंदा नहीं। तो इस तरह अपनी संस्कृति को बचा करके रखना है, और बचाने वाले हम ही लोग हैं ना। जैसा हम पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे, करेंगे, वैसे ही हमारी भावी पीढ़ी बनेगी। सभी लोग अपना अपना धर्म देखें, हमारा धर्म क्या है। धर्म का अर्थ है असली कर्तव्य। हमारा जो कर्तव्य है वो हम करें। लेकिन आज के युग में लोग अपना न देख करके दूसरे को दोष देते रहते हैं, वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर नहीं। अपना जो कर्तव्य है वो देखना है। हमेशा ध्यान रहे इसका, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये किस प्रश्न का उत्तर होगा इतना ज्यादा? तो बहुत संक्षेप में उत्तर हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु जपते थे माला पर, प्रभुपाद जी जपते थे, भगवान शंकर जपते हैं, ब्रह्मा जी जपते हैं, सरस्वती जी जपती हैं, और शायद शेषनाग माला पर नहीं जपते हैं, पता नहीं। लेकिन और सब तो माला रखते ही हैं, जपते हैं। हम लोगों को भी माला रखनी चाहिए जरूर। अगर कम जपे या अधिक जपे, माला रखनी चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों से भी पूछते हैं कितना माला जपते हैं, तो कह देते हैं एक, कभी दो, कभी चार, कभी पांच। लेकिन एक बच्चा था बिल्कुल छोटा, पूछा कितना जपते हो, तो आठ माला। तो आठ मणिका पर वो महामंत्र बोल देता था, तो उसी को मानता था कि आठ माला हुई। कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जितना जपते हो उतना। एक माला भी जपते हैं वो अच्छा है, भगवान से संबंध तो है ना, भगवान के नाम से प्रेम है। और कभी कभी भक्त माला कितना जप हुआ पूछने पर सीधे गिनती दिखाते हैं, इस गिनती 20 की गिनती, तो 20 माला। तो बहुत अच्छा है, अगर याद रखें बिना गिनती के तो ठीक ही है, या काउंटिंग बीड गिनती माला कहाँ है मेरी, ये है काउंटिंग बीड। कितनी माला हुई इसको गिनने के लिए, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इतना तो याद रहता ही है कि इतना माला हुआ। क्या अच्छा, सागर नामक शहर में मैं एक डॉक्टर के पास था, उपचार के लिए नहीं, और डॉक्टर हैं, तो एक दिन मेरा प्रोग्राम सागर यूनिवर्सिटी में बना था प्रवचन के लिए, तो सागर यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आए थे, हमको लेने के लिए तो मैं बैठ गया जब गाड़ी में, तो डॉक्टर साहब जो जिनके पास मैं रहता था वे कहे जरा मैं अपना राइफल ले लूं, तो मैं समझता था कि राइफल का क्या मतलब है, राइफल मतलब अपना माला झोली, तो अपना राइफल लेने के लिए माला झोली लेने के लिए उतर गए, तो गाड़ी में जो प्रोफेसर बैठे थे वो घबराने लगे उस समय नहीं कहे हमसे, लेकिन पहुंचने के बाद कहते हैं अरे मैं तो राइफल सुन करके घबरा गया कि क्या करेगा ये, हमारे परिवार को मारेगा क्या है, हमसे लगे कहने की आप गाड़ी में बैठे थे और मैं बहुत चिंता में पड़ गया क्यों राइफल लेने गया, जो राइफल लेकर के नहीं आए तो पूछे राइफल लेकर के नहीं आए तो कहे कि यही राइफल है, तब होश में होश जी पाए और घबरा गए, तो ये राइफल है, ये माया से युद्ध हो रहा है तो ये राइफल रखिए, राइफल जरूरी है, सब समय राइफल नहीं चलाते हैं लेकिन रखते हैं काम आता है, राइफल ढोने में इतना भारी होता है फिर भी लोग ढोते हैं ना, पुलिस के लोग ढोते रहते हैं या मिलिट्री के जवान ढोते रहते हैं, इसको ढोने में कौन परिश्रम है, बस गले में लटक रहा है, ठीक जपना है तो जपी, नहीं जपना है फिर भी ढो कर लेकर चलिए, यह सबसे बड़ा अस्त्र है भगवान को बस में करने का, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। इसे रखना चाहिए, क्या परिश्रम है, कुछ चीज जैसे भगवत गीता और माला रखना कौन बड़ी चीज है, रख सकते हैं कोई भी आदमी, जब कभी समय मिला गीता का एकाध श्लोक पढ़ लिया, परपर्ट पढ़ लिया को काम आएगा, भगवान से संबंध जोड़ने में आठ चीजें बहुत प्रमुख हैं, एक है तुलसी, गंगा जी, गायत्री मंत्र, गंगा गायत्री तुलसी चंदन शालग्राम, वो केवल देखने में पत्थर है परंतु भगवान का स्वरूप है शालग्राम, गीता रखनी चाहिए, पढ़े तब तो सोना में सुगंध है, लेकिन नहीं भी पढ़े तो कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई घर के में पिताजी पढ़ेंगे, दादा पढ़ेंगे, ये कोई भी पढ़ेगा, कोई अतिथि आएगा वो देखेगा, अगर पढ़े भी ना तो केवल फोटो देखेगा तो फोटो देखने से भी कल्याण होगा, इसलिए गीता रखनी चाहिए, ये सब वस्तुएं भगवान से जुड़े रहती हैं, गीता गायत्री गंगा। अब आपका प्रश्न पत्र सुनना था, पत्र इकट्ठा किए हैं। अब समाप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।